ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद्भागवतम का पांचवा स्कंद है, अध्याय 26वां, श्लोक संख्या 28 और 29। यस्त्वीह वा अनृतम वदति साक्षे द्रव्य विनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रेत्य नरके अविचिमत्यश्च अध्यश्च अधः शीरा निरव प्रकाशे योजन शतो छायादगिरी मूर्छन मूर्धन संपात्यप्ते यत्र जलमेव स्थलम अश्म पृष्ठम अवभासते तद विचित मत्ति लशो विशीर्यमाण शरीरो न प्रियमाण न म्रियमाण पुनरारोपित निपतति। यह जो तो लेकिन यह इस जीवन में वा अथवा अनृतम असत्य या झूठ वदति बोलता है साक्षे साक्षी देने में द्रव्य विनिमय वस्तुओं के आदान प्रदान में दाने दान देने में वा अथवा कथंचित किसी प्रकार सह वह व्यक्ति वही निसंदेह प्रित्य मरकर नरके नरक में अविचिमती अविचितमत नामक जिसमें जल नहीं है अधः शिरः अधोमुख निरवकाशे आधारहीन योजन शत 800 मील की उच्छ्रयात ऊंचाई वाला गिरी पर्वत की मूर्धन चोटी से संपात्यते फेंक दिया जाता है यत्र वह जहाँ जलम इव जल सदृश स्थलम स्थल या भूमि अश्मपुष्ठम पथरीली सतह वाले अवभासते प्रतीत होता है तत् वह अविचिमत बिना जल या लहरों वाला तिलशः तिल के बीजो सदृश सूक्ष्म खंडों में विशीर्यमाण फाड़ा जा रहा फाड़ा जा करके शरीर देह न मरियमाण न मरने वाले पुनः फिर आरोपित चोटी तक उठा हुआ निपतती नीचे गिरती है। अनुवाद श्री श्रीमदेश भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस जीवन में जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देने व्यापार करते अथवा दान देते समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है वह मरने पर यमराज के दूतों द्वारा बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा पापी व्यक्ति 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से मुंह के बल अविचिमत नाम नरक में नीचे फेंक दिया जाता है। इस नरक का कोई आधार नहीं होता और उसकी पथरीली भूमि जल की लहरों के समान प्रतीत होती है, किंतु इसमें जल नहीं है, इसलिए इसे अविचिमत यानी जल रहित कहा गया है। वहां से बारंबार गिराए जाने से उस पापी व्यक्ति के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते और उसे बारंबार दंड सहन करना पड़ता है, यानी कि बारंबार पर्वत की चोटी पर ले जाकर फिर से गिराना होता है। आगे बढ़े। यस्त्वीह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठ तसस्कम करत्क्रम अत्रम वा सुराम व्रतस्थोपि वा पिबति प्रमादत्तस्तेषां निरयं नितानां मुरसि पदाक्रमं यस्य वह्निना द्रवमानं कार्ष्ण्यायं निषिञ्चति। यह जो तो लेकिन इह इस जीवन में वै निसंदेह विप्र विद्वान ब्राह्मण राजन्य क्षत्रिय वैश्य वैश्य वा अथवा सोमपीठ सोमरस पान करते हैं, तत् उसकी कलत्रम स्त्री वा अथवा सुराम मदिरा व्रतस्थ व्रत रखने वाला अपि निश्चय ही वा अथवा पीयति पीता है प्रमादतः मोहवश तेषाम उन सबों को निरयम नरक तक निता नाम लाया जाकर उरसी वक्षस्थल पर पदा पैर से आक्रम्य प्रहार करके अस्ये मुंह में वहनिना अग्नि से द्रवमानम पिघलाया काष्ण्याय सम लोह निषिंचंती उड़े लेते हैं। अनुवाद तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। जो ब्राह्मणों या ब्राह्मण मद्यपान करता है उसे यमराज के दूत अयह पान नाम का नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। अयह पान नरक में यम के दूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुंह के भीतर तप्त यानी पिघला लोहा उड़ेल लेते हैं। मनुष्य को केवल नाम का ही ब्राह्मण नहीं होना चाहिए और न ही सभी प्रकार के पाप कर्म विशेष रूप से मद्यपान करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जनों को चाहिए कि अपने वर्णाश्रम अनुसार आचरण करें। यदि वे पतित होकर मद्यपान के आदि अर्थात शूद्र बन जाते हैं तो उन्हें यहां वर्णित विधि से दंडित किया जाएगा। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितने प्रकार के कुकर्म करते हैं उतने ही प्रकार के नरक होते हैं। ये जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद तो सूक्ष्म शरीर धारण करता है, मन बुद्धि और अहंकार वाला। उसका भी तो ये शरीर बताया जाता है। तो ये शरीर वाले जब उसके कुकर्मों के अनुसार उसको सजा मिलती है तो सजा की भयानकता उसको सिर्फ देखनी भी नहीं पड़ती है बल्कि सहन भी करनी पड़ती है। हम तो समझ रहे हैं कि हम जो कुछ करें भौतिक शरीर से करें, मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो कुछ नहीं करना होता है, मैं क्या करूं, ये कोई राक्षस मेरे शरीर में होगा वही तो करवा रहा है। लेकिन वो राक्षस मन बुद्धि और अहंकार होता है। तो जैसे हमारे गुण कर्म में हम भगवान को समर्पित न होकर काम करते रहते हैं तब हालत कितनी बेकार हो जाती। यानी इसका मतलब है बाहर दुनिया में जो हैं वो ज्यादातर सभी नरकगामी ही तो होंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा है उसको ये पता नहीं होगा कि उसका शरीर है ही नहीं, इसलिए घूमता फिरता रहेगा, वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे कि हम मन में सोचकर हम अपने आप को कहीं भी ले जा सकते हैं या स्वप्न में भी ले जाते हैं कहीं भी, लेकिन स्वप्न में भी यदि हमें नरक का ख्याल नहीं आता, क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ वर्णन है कि हम रात को स्वप्न में ऐसा देखेंगे कि ऐसी हालत होती है तो चरा इस पर ध्यान दे दूं, नहीं वो दिमाग में जाता ही नहीं। कभी ऐसा किसी ने भयानक स्वप्न देखा है? बचपन में देखते होंगे, बालक के स्वरूप में देखते होंगे, तो लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो देहात्म भान से इतना लगाव बन जाता है कि जब हम अपने आप को देह मानते हैं लेकिन देह तो नश्वर है। पंच महाभूत का शरीर को जलाना पड़ता है, उसकी यातना जलते जलते भी किसी को यानी कि जिसका मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर अभी तक चिपका है तब तक बना रहेगा। यानी कि ये यातना तो सहन करनी पड़ती है। आप यदि किसी के स्मशान यात्रा में गए हो तो जहां शरीर जलता है तो यहाँ जो डाघिए लोग होते हैं यानी कि जो ठेका ले लेते हैं कि इस भूमि पर आप जला सकते हो लेकिन आपको हमें कुछ देना होगा, वो कहीं से भी आ जाए, वो लोग कोई ऐसी मदद नहीं करते हैं। लकड़ी की कीमत चुकानी पड़ती है, सब कुछ चुकाना पड़ता है। शरीर को अंदर डालते जब अग्निदह दिया जाता है। हाँ, तो देखो उसी समय सभी अंग पिघलने लगते हैं गर्मी से, अलग अलग होते हैं। ध्यान इतना रखना होता है कि वहां के डागी किसी का भाई शरीर जलता है तो समय समय पर आ जाता है, क्योंकि उतने समय में हाथ पांव पैर ये सब कुछ अलग होने लगते हैं, पिघलने से अलग होने लगते हैं। इसकी यातना वो सूक्ष्म शरीर तो करेगा ही, क्योंकि चिपका रहता है। लेकिन डागिए हमें कुछ बताते हैं, वो लोग की नजर कहाँ है, क्योंकि उस समय कुत्ते भी आते हैं। आपने देखा होगा जो गए हैं यमुना के घाट पे तो कुत्ते भी आते हैं, डागिया और जलाने के लिए आपकी नजर बाहर, उसके पांव यदि अलग हुए हैं तो अलग कर देंगे, ये कुत्ते का प्रसाद है करके। तो जब हम अपने परिचित उसकी श्मशान यात्रा में गए थे तो हमें अग्निदाह देना पड़ा था, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। तो हमने सावधानी से वहीं के वहीं डटे पड़े, नहीं तो ज्यादातर परिवार के लोग चले जाते हैं और डागिए पर छोड़ देते हैं, ले तुझे थोड़े पैसे दे जलाकर जो करना है वो कर। यमुना किनारे इसकी अस्थि सीधी ही चली जाएगी वो समझ, लेकिन उस बीच में क्या होता है कि डंडा मार के खोपड़ी फोड़ के अंदर घी जलाना जलाते, सारा अंदर वाला भी मसाला कहते हैं वो जलाकर खाक करना पड़ता है। तो क्या जो जीव अपने शरीर पर जितना आसक्त हैं उसी समय क्या उसको सूक्ष्म शरीर में भी परेशानी तो काफी हो, वो ये नरक का ही भाव रखेंगे। और बाद में सब जल जाने पर एक चीज नहीं इतनी जल्दी से जलती है, वो जहां से ज्यादा देहात्मा भान पैदा होता है वो करोड़ रज्जु के नीचे का भाग है, अंग्रेजी में उसे सैक्रम कहते हैं, ये सैक्रल पार्ट जो मूलाधार चक्र की बात है। तो मूलाधार वाला जो हिस्सा है वो जलने में बहुत देर लगा था, सबसे अंत में ये जलने। तो वो लोग कहते हैं ये तो वहां जी भरा हुआ है, मूलाधार चक्र अपने सारे शरीर के नीचे वाले अंगों को चेतना देता है। इसका मतलब ये है कि ये रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ है। कुंडलिनी योग में तो मूलाधार से चक्र से अपनी कुंडलिनी जागृत करके ऊपर चढ़ानी होती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचानी होती है, फिर भी आज्ञा चक्र में पहुंचकर यदि जानता नहीं कि मेरा गंतव्य स्थान कहाँ है तो वापस आना पड़ता है। यदि वापस आने की भी उसके पास कला होनी चाहिए, नहीं तो फंसा रहता है, पागल हो जाता है। ऐसी ऐसी कर्म के जो विपाक हैं इनकी परिस्थिति समझनी चाहिए। तो अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम्। भगवान की प्रीति के लिए हमें अपने अपने वर्ण और आश्रम के में जो सुचित कर्म करने, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करने, वो ही करना सबसे बड़ा उत्तम है। तो ये नरक की यातना सूक्ष्म शरीर भोगता है। गरुड़ पुराण में तो उसका विस्तृत वर्णन है। ये मृत आत्मा यानी कि मन बुद्धि और अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है पहले, ऐसे व्यक्ति जो दक्षिण मुखी मार्ग ग्रहण करता है, यानी कि नरक का मार्ग ग्रहण करता है, तब वो इन इन यातनाओं में पसार होते हैं। जितना गहरा उसका अध्यात्म भान और व्यभिचारी जीवन है, उतना ही गहरा उसको इस प्रकार दंडित किए जाने पर बाधित रहता है। यहाँ जो झूठ बोलने वाला, झूठी गवाही देने वाला, हाँ, और मदिरा पान करने वाला है कि भी क्या हालत होती है ये बताते। यहाँ कोई कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब भगवान के अनुसार जो वर्णाश्रम की रचना में जो जो सुचित कर्म है उसका उल्लंघन करने वाले हैं के लिए जो सजा है, खास करके अगले श्लोक में मद्यपान करता है तो अयपान नाम का नरक में ले जाते हैं। सोमपान यानी कि मद्यपान तो वही इसी नरक में स्थान पाता है, दूसरे भी तो उसकी छाती पर चढ़ के मुंह के भीतर तप्त पिघला लोहा उड़ेल देते हैं। अभी यूं देखें तो सूक्ष्म शरीर की छाती देखी है, लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है क्योंकि अहंकार की वजह से, यानी कि मिथ्याभिमान जो होता है कि हम कौन है, वो भी उसका नष्ट नहीं हुआ है और हम दासो अस्मि, मैं भगवान का दास दासानुदास हूँ, ऐसी उसकी जब तक आइडेंटिटी यानी कि उसकी पहचान खुद को नहीं होती, तो ये 800 मील ऊंचे पर्वत की टोची पर, अरे 800 मील की ऊंची की टोपी कैसे, अरे पर्वत की ऐसी टोच पर उसको ले जाकर नीचे अविचित नाम का नरक की भावना, ऐसे झूठा गर्व करने वाला ऐसा जो व्यक्ति है वो ऐसे विशेष पाप कर्म में जुटा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और 800 मील की दूरी की क्या बात है। एक तो शरीर सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में 800 मील की भावना करो, हम इतने बड़े हैं और 800 मील की ऊंचाई करते हैं, लेकिन ये भौतिक दृष्टि से या भौतिक मापदंड के अनुसार अशक्य लगता है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर के लिए उसके अनुसार 800 मील तो होना चाहिए, तो इतना बड़ा ऊंचा नहीं लगेगा। यानी कि दृष्टि दृष्टि में भेद रहता है, हमें भगवान की दृष्टि से हम 800 मील सही मान लेते हैं, लेकिन एक आत्मा के अनुरूप 800 मील हो सकता है। यानी कि आत्मा इतना छोटा है तो उसके लिए 8 फुट भी 800 मील जैसा लगता है, इतना छोटा है, फिर भी वो मन बुद्धि और अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर में फंसा रहता है, तो उसकी यातना उसे भोगतनी पड़ती है। तो सूक्ष्म शरीर वाले जब ये नरकगामी बनते हैं, वहां तो नहीं बताया, हाँ, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी अपने भौतिक शरीर के अनुरूप ही होता है, उसका भी मत्था होता है शरीर और हाथ भी होते हैं, तो ज्यादातर इतनी अपने अंगों की रचना के अनुसार नहीं है, वो एक दुबे में भी ऐसा परछाई दिखाई देता है कि देखो ये शरीर के अनुरूप है। नहीं, ये कोई उपमा या रूपक के रूप में भी नहीं है। जहां तक जो चेतना का विषय है तो ये सूक्ष्म शरीर में जीव की चेतना तो नाश नहीं पाती, चेतना भी सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म चेतना होती है। तो प्रमाण से देखो, अनुरूपता से देखो तो ये सूक्ष्म शरीर भी कल्पना का विषय बन जाता है। लेकिन जब हम शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म शरीर होता है। कैसे आप उपमा को समझोगे? जैसे कि अपने मूल शरीर पर जो वस्त्र है वो भी अपने स्थूल शरीर के अनुसार है। यदि आपकी धोती कुर्ते इत्यादि लटकाकर दीवार पर चिपका दे तो उस पर शरीर का रूप क्या है उसका तो ख्याल आएगा ना। उसी तरह जो मन बुद्धि और अहंकार वाला शरीर है वो इतनी डिटेल में तो नहीं होगा, लेकिन उसका अनुरूप शरीर हो सकता है। जो सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि और अहंकार, तो जब किसी को किसी के मन में कुछ चलता है अहंकार वाली भावना करता है तो हम तुरंत कह दे के देखो उसके दिमाग में धुआं घुसा है। यानी कि धुएं में भी जो आकार होता है, तो कभी कभी बादलों में भी धुएं जैसा आकार होता है। तो कई लोग भावना करते हैं, खास करके पश्चिमी देशों में भी ऐसा है, कहीं धुएं में कृष्ण भगवान जैसा आकार दिखाई देता है, तो वहां जीसस क्राइस्ट या मेरी का आकार दिखाई देता है, तो लोग खड़े हो जाते हैं, हे देखो मिरेकल हुआ, आश्चर्य, देखो वहां दिखाई देता है। क्रिश्चियन लोगों एपिरेशंस कहते हैं उसे, उसको ऐसे सूक्ष्म परिचय होता है, धुएं के आकार पर जीसस क्राइस्ट दिखाई देता है। आपको एक उदाहरण दो, जब जीसस क्राइस्ट को शूली पर चढ़ा दिया था तब उसकी माँ ने उसका शरीर हटवा कर, क्रॉस पे थे ना, तो बाद में चादर में लपेट दिया, और जब चादर में लपेट दिया है तो वो चादर बाद में रही, क्योंकि जीसस ने कहा था कि मैं तीसरे दिन उठकर आप लोगों के समक्ष फिर से हाजिर होऊंगा। तो जिस गुफा में दफनाया था चादर लपेटकर, तो ये चादर रह गई। जीसस ने अपने 12 शिष्यों को दर्शन देकर कहा मैं चला जाता हूँ, आप जाओ सारी दुनिया में इस धर्म का उपदेश फैलाओ। तो 12 लोगों कितनी दिशाओं में चले गए और इसी तरह क्रिश्चियन धर्म फैलाना चालू हुआ। लेकिन वो जो चादर पड़ी थी वो किसी ने लेकर संग्रहित की। ये चादर आज इटली में टूरिन नाम का एक शहर है, वहां के म्यूजियम में दिखाई देती है, और उसका अंदाजा लगाते हैं क्योंकि उसमें जीसस क्राइस्ट की छाप पड़ी है, इसकी छाप पड़ी है, तो उसे श्राउड ऑफ टूरिन कहते हैं, टूरिन की ये चादर जीसस क्राइस्ट पर उड़ाई। तो जीसस क्राइस्ट कैसे दिखाई देते होंगे, ये छाप पड़ी है। हाँ, तो कहने का मतलब है जो भी हमें कुछ परछाई के रूप में दिखाई देता है, ऐसी भावना होती है कि ये देखो हमें तो चमत्कार हो गया, लेकिन चमत्कार कुछ नहीं है। सूक्ष्मता ऐसे मन बुद्धि और अहंकार की होती है, कोई शांत भाव में चला जाता है। अन्य लोग भी अलग अलग प्रकार की खोज करते हैं, और ये भी साइंस में पढ़ाया जाता है कि हमारे शरीर में जो चेतना निकलती है वो चेतना की छाप पड़ जाती है, यानी उसे ओरा कहते हैं। ओरा किसी भी प्रकार का, ये हाथ का भी ओरा होता है, पत्ते पेड़ के पत्ते का भी ओरा होता है, ऐसी फोटो देखिए। और कई लोग इतने विज्ञान के साधन जब हो गए हैं तो फोटोग्राफी का उपयोग करते हैं कि मरते हुए आदमी क्या फोटो लेना चाहिए, और इसमें भी जो शरीर में जो गर्मी ऊर्जा इसका नाप तोल करके कैसे शरीर छोड़ता है उसके ये और सब में देखोगे तो एक शरीर की रचना के अनुसार ही अन्य अन्य प्रकार की सूक्ष्मता में उसका जो फोटो निकलता है। तो अब ताजुब हो जाओगे क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी ऐसा ही लगता है, हाथ है पांव है, इतनी डिटेल में नहीं लगेगा क्योंकि ऐसे साधन उपकरण इत्यादि नहीं है। कहने का मतलब है कि मन बुद्धि और अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर यातना सहन करता है, उसे जबरदस्ती से यातना सहन करनी पड़ती है। हम तो समझते हैं कि मैं मर जाऊंगा कुछ नहीं होगा, नहीं, जैसे कर्म कर्म की गहराई इतना जो लगाव हम जीते जी अनुभव करते हैं वो लगाव चालू रहता है, बल्कि गहरा होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को ढूंढता है और उसको जबरदस्ती से हटाया जाता है। तो ये यातना जब सूक्ष्म शरीर सहन करेगा या उसको उसमें से पसार होना पड़ेगा, तब कि ये दशा कोई ऐसे रूपक द्वारा नहीं की गई है। आत्मा की जो जितनी साइज है, जितना नापदंड है, उसकी मात्रा में 800 मील की ऊंचाई वाला पर्वत की टोच पर उसके गिराना और अविचित नाम का ये नरक की बात की है, जो पानी की लहरें जा रही है ऐसा दिखाई देता ऊपर से, लेकिन पानी नहीं है, सिर्फ पर चट्टान है, वो जो लहरों के अनुसार दिखाई देती है। पानी नहीं है फिर भी उसमें फेंकना, यानी कि वो जो गिरता है सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर की को विदीर्ण होना यानी कि छिन्न भिन्न होना, फिर भी वो मरता नहीं, कह रहे देखो फिर भी वो मरता, यानी कि उसको उठा के यम दूते बारंबार फेंकते हैं, ऐसी यात्रा। और जो सोचो कि ऐसे एक तो बाज पक्षी होता है गरुड़ जैसा, एक बड़े बड़े भेड़ को पर्वत की टोच से उठा के फेंकते हैं, फेंकते हैं और वो नीचे मर जाएगा तो आराम से जाकर खाएगा, ये पक्षी से भी बड़ा शरीर भेड़ का होता है। तो यदि ये कुदरत में रचना है तो ये कुदरत की ये सूक्ष्मता में भी वही रचना है बताई गई है। इस तरह मृतात्मा जो मन बुद्धि और अहंकार वाले शरीर को लेकर ये यातना अनुभव करता है तो ये तो हमारे दिमाग में जाता ही नहीं। लेकिन सूक्ष्मता का परिचय होना आवश्यक है कि ये मन बुद्धि और अहंकार वाले शरीर की ये दशा होती है। फिर भी मरता नहीं, क्योंकि जब तक आत्मा होती है वो मरने की तो बात ही नहीं करेगा, नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायाम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर हन्य होता है, सूक्ष्म शरीर भी हन्य दिखाई देता है, क्योंकि ये भी उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, पर फिर भी वो जिंदा रहता है। यानी कि यातना का विषय है, अनुभव के बजाय हम थोड़ी सी बुद्धि द्वारा उसको समझने की कोशिश करें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखाई देगी। तो ये सारे अध्याय में हमें समाधान की दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी तो सीधा कह देते हैं कि यदि वे पतित होकर मद्यपान के आदि अर्थात शूद्र बन जाते हैं तो उन्हें यहां वर्णित विधि से दंडित किया जाता है, जाएगा लिखा है, निश्चित है। वो कितनी भी बाहरी दृष्टि से हम सोचने का यदि प्रयत्न करें तो दिमाग में नहीं उतरता। पर लेकिन आजकल साइंस भी इतना आगे बढ़ गया है तो साइंस की सूक्ष्मता में भी ये सब सत्य प्रकट होते रहते हैं, उसका क्या। वो लोग तो दावा करते हैं कि हम गप्पे नहीं मारते, ये तो शास्त्र गप्पा मारता है क्या? नहीं, शास्त्र भी गप्पा नहीं मारता। तो ये आवश्यकता हमारी बनी रहती है कि सूक्ष्मता से जरा सोच करनी चाहिए। ये भगवान तरफी होती है, और भगवान ने जो कहा कि असुरों को यानी कि पापियों को क्षिपामी असृजम आसुरी मुनि मापयन, ऐसी आसुरी योनि में ऐसे पापियों को मैं बारंबार फेंकता रहता हूं। अजस्रम लिखा है, यानी कि उसका कोई विकल्प नहीं है, बारंबार फेंकता रहता हूं। ऐसे ऐसे जब तक इन लोगों की के अहंकार नष्ट न हो जाए। हमें तो भक्ति करते सीधे अहंकार को ही पिघलाना होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे अलावा तो कोई यहाँ काम ही नहीं हो सकता। क्या भगवान बन गया कि तेरे न होने से पत्ता भी नहीं हिल पाएगा? नहीं, ये अहंकार को पहले, मिथ्या अहंकार को तो पहले ही समझ कर उसको फटकार करना चाहिए। सच्चा अहंकार दासो अहम अस्मि, तब चैतन्य महाप्रभु ये उपाय देते हैं। फिर भी वो यदि हमारे जीवन में अनुरूप भक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, भक्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करना चाहते हैं, तो अवश्य मिथ्या अहंकार पलता रहेगा। तब हम गर्हित काम भी कर लेते हैं, कली चेला बन जाते हैं, ना के तिलक गले माला पहन कर लेकिन कुकर्म करते रहते हैं। तो क्या हम पाप से छुटकारा पाएंगे? अरे हम तो अंत समय में भगवान का नाम लेकर भगवत धाम चले जाएंगे। अरे होता है क्या है? ये कोई आसान है? इतना लगाव और शरीर से ज्यादा सूक्ष्म शरीर का लगाव ज्यादा होता है। अपने शरीर का जो लगाव है उससे ज्यादा सूक्ष्म शरीर का लगाव होता है, क्योंकि पहले तो अंदर से आता है इच्छा है। सूक्ष्म शरीर ही बोलेगा जाओ ना मौके का फायदा उठा लो। बाद में देखा नरक तो होता है तो बोलने की बात है, हम हरी बोल कर देंगे सब मिट जाएगा। तो जानते हुए यदि पाप कर्म करना ये तो और ज्यादा गर्हित कर्म कहलाता है। लेकिन यदि अपना अहंकार नष्ट हुआ हो तो हम भगवान से माफी मांग लेते हैं, कोई भी कर्म करते हैं चाहे इनकी पूजा का भी क्यों ना हो। ओम अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद अशुभम यन्मया कृतम क्षमस्व मधुसून दासो हम इति माम मत्वा क्षमस्व मधुसूदन। तो कम से कम ये खोपड़ी ठिकाने रहेगी, अहंकार वाली नहीं बनेगी। ये जो वर्णन है नारकीय लोकों का वर्णन, इसमें काफी जरा गहराई से सोचना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि शास्त्र जो कहता है सत्य है। शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य ये ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसी सूक्ष्मता से ज्यादा कोई सोच नहीं करता ज्यादा, लेकिन जैसे भक्ति में प्रगति होती है तो हमें अवश्य ये सोच पर ध्यान रखना पड़ता है कि किसी न किसी ढंग से ये समस्या नहीं बननी रह चाहिए कि हम विश्वास नहीं करते। शास्त्र आज्ञा तो सर्वप्रथम आज्ञा होती है। किसी को कोई प्रश्न है? नो, लेडीज फर्स्ट। माता जी फोन माइक्रोफोन कहाँ है? हाँ
आपने बताया कि प्राय शरीर के पास जब उसका दाह संस्कार करते उससे प्राय घूमते रहते, अगर आगे से गाय आ जाए तो उसका क्या?
गैया तो वैसे पवित्र होती है, पर गैया थोड़ी नुकसान करती है, लेकिन कुत्ता अपने स्वभाव के अनुसार मृत शरीर को खाना चाहता है। तो यही यमदूत का भी तो स्वरूप कह दे, और या नहीं तो नरकगामी शरीर को खाने वाला उरुरु नाम का नरक की बात भी है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारी जो भावना वो डाघिए में क्यों है हमें तो कोई पता ही नहीं। वो कहता है अरे उसका भी तो भोजन होता है, ये नहीं तो नदी में फेंक देते, यमुना मछली खाएगी, इनको देना है, ये तो उसका प्रसाद है करके देखेंगे, इनको खिलाना चाहिए। तो जहां तक इन चीजों जो उन लोगों के स्वभाव में यानी कि इनकी जो जिम्मेदारी है वो शूद्र कक्षा के तो होते हैं, वो लोग कोई ब्राह्मण नहीं होते, क्षत्रिय नहीं होते, वैश्य नहीं होते, शूद्र और शूद्रेतर लोग हैं जिनको तो लोग छूते भी नहीं, क्योंकि सदा इनका शरीर अपवित्र रहता है। लेकिन उन लोगों की भी सामाजिक व्यवस्था करने की गृहस्थों की जिम्मेदारी है, इसलिए अपने समाज में ऐसे वर्ग भी है। हम उसे चाहे कहें पिछड़े वर्ग हैं, अमेरिका में तो कोई वर्ग ऊंचा भी नहीं और सभी पिछड़े ही हैं भागवत की दृष्टि से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पश्चिमी देश है मूढ़ा अनाचार, आप जितने पश्चिम में जाओगे वहां ज्यादा मूढ़ और अनाचारी ही लोग होंगे, लेकिन सभी शुद्धंति ते प्रभु विष्णुवे नमः, भगवान का नाम से सभी शुद्ध हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने किया तो अपना विषय देहात्म बांध छोड़ने का है। देहात्म बांध छोड़ते जब ये नरक की यातना का कोई प्रश्न नहीं उठता, चाहे कैसे भी आदमी भक्त शरीर छोड़ता है तो उसके मुंह में यदि भगवान का नाम भी नहीं हो फिर भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी सेवा भगवान की जीते जी कर जाता है उतनी सेवा तो भगवान याद रखते हैं। उसको तो याद भी नहीं होगी मैंने पहले क्या किया था, पिछले साल मैंने क्या किया। तो कहने का मतलब है कि ये सूक्ष्म शरीर की क्या परिस्थिति है, नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं कि अंत काले मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम स्वप्रयाति मत भावम जाति नात्र संशय। यदि याद करके शरीर को त्याग करते हैं तो अवश्य सीधे ही डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। यारी बोल हाँ, क्या हमारे में चार डिफेक्ट नहीं है क्षतियां, झूठ बोलने की तो होती ही है, यानी कि वो नरक तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हम अपना शरीर या आप पैदा हुए तो चार क्षतियों से ग्रस्त हैं, लेकिन पूर्णता प्राप्त करने के लिए पूर्ण की शरण में जाना चाहिए, वो है कृष्ण। तो क्या कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से झूठ बुलाएंगे तो क्या उसको नरक भोगना पड़ेगा? अरे गए थे और दुर्योधन मश्करी कर रहा था, हे देखो सारी जिंदगी वो सच बोला, एक बार झूठ बोला तो नरक में जाना पड़ा। तो भैया ये क्या हुआ? तो मैं तो अपने पिताजी से मिलने गया था, यमराज मेरे पिता है और विशुद्ध भक्त है, लेकिन वो लोग तेरी राह देख रहे हैं, उसका क्या है? दुर्योधन चौंका, ओ क्योंकि हमें मौका देते हैं तुझे, क्या तेरे सत्कर्मों का परिणाम चाहिए तो स्वर्ग में जा, दुष्कर्मों का परिणाम चाहिए तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तो ये दोनों मिश्र हैं, दोनों मिश्र हैं, इसमें किसका पल्ला ज्यादा होता है? ज्यादातर तो कलयुग में अपने कुकर्मों का पल्ला ज्यादा होता है, इसीलिए कलयुग दुर्भागी कहा, उसमें कोई सद्भाग्य नहीं है। कलह दोष निधे राजन, लेकिन अस्थि एको महद्गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम प्रजेत। सिर्फ भगवान कृष्ण का कीर्तन ही एकमात्र उपाय है। तो जितना सही ढंग से हम ये चेतना की जागृति लाकर हम यदि कीर्तन करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी, वो प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं। लेकिन हमें ये विकास करने की तो आवश्यकता है ही। तो उतना बंधन भी तो होगा ना। यदि शरीर निर्वाह के लिए झूठ बोलो तो कोई आपत्ति नहीं बताइए, लेकिन उससे उपरांत इतनी गहराई से आपको प्रतिकार मिलेगा। हाँ, क्या हम अनजाने में भी अपने जीने के लिए अपना खुद का मार्ग अपना लेते हैं? नहीं तो चोरी भी करते हैं, तो क्या चोरी करना पाप तो है ही? लेकिन शरीर निर्वाह के लिए यदि करना पड़ा तो वो नाप तोल के बाहर यदि चला जाता तो उसको दंडित होना ही पड़ता है। सरकार को देखना चाहिए कि सभी की आवश्यकता की पूर्ति करे। ये आवश्यकता के उपरांत लेना तो सबके लिए चोरी करने का ही बराबर बताया था। अरे भगवान को भोजन अर्पित न करके खुद के लिए पकाता है वो भी तो चोरी कहलाता है, जाएगा नरक में। तो ऐसे इसका मतलब है उसका देहात्म बांध बढ़ता जाएगा और अहंकारी जीवन में ऐसी यातना भोग सकता है। और कुछ? हाँ प्रभु जी, है यातना, यातना शरीर, जो यातना भोगता है वो शरीर, वो तो स्थूल भी यातना भोग सकता है और सूक्ष्म भी ज्यादा भोग सकता है। सूक्ष्मता का लगाव ज्यादा है तो यातना का भी प्रभाव ज्यादा है। हम तो थोड़ी सी यातना भी सहन नहीं कर पाते फिर भी हम सुधरते नहीं, उसका क्या है? तो बहुत सारी विविधताएं अपने अहंकार के अनुसार बनी रहती हैं। आपका मानस कैसा है, ये कैसा है, नहीं सबके लिए एक ही ब्रह्मास्त्र उपाय बताया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई? हाँ, नहीं मिथ्या अहंकार नहीं रहना चाहिए, सच्चा अहंकार यानी कि अपनी आइडेंटिटी है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के दासों का दास है। चैतन्य महाप्रभु क्यों कहलवाते हैं कि ये अपनी मूल बंधारणीय स्थिति है। ईर्षा और अलग इच्छा से तो हम गिरे और उसके द्वारा जो अहंकार प्राप्त हुआ तो हम तो सोचते हैं कि हम कभी गिरने वाले ही नहीं, लेकिन मरते के बाद भी गिरना चालू हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इस तरह ना समझ लोग तो भगवान को और कोसेंगे। और कोई श्रद्धालु होता है फिर भी पूर्व जन्म का उसका पाप नष्ट नहीं होते और भोगता है, अरे भगवान आप पर विश्वास रखना भी झूठ है करके, यानी कि बहुत सारी विषमताओं, जितना आदमी जटिल होता है इतनी विषमता ज्यादा, जितना आदमी सरल होता है उतनी उसकी सरलता ज्यादा। ये सरलता में वो सुखी रहता है, विषमता में बंधनों में झगड़ा रहता है। बहुत है, तो आप सभी का धन्यवाद और प्रसाद प्राप्त करें। हरे कृष्णा।